हम सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चों के लिए हमारे मुख्य चार सब्जेक्ट हैं, आप सभी जानते हैं कौन कौन से हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट बोली में भी रोज आते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट है याद, याद कहें योग कहें ना। ज्ञान भी क्यों मिलता है हमें? ज्ञान भी योग की गहराई में जाने के लिए मिलता है, क्योंकि योग के द्वारा ही विक्रम विनाश होते हैं। 63 जन्मों के विक्रम किसके द्वारा विनाश होते हैं? बाबा की याद के द्वारा, निरंतर याद के द्वारा। जब हमारी याद निरंतर हो जाती है तो हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं, और विक्रम विनाश होने से हमें धारणा होती है। जो ज्ञान हम सुनते हैं ना, ये तो ज्ञान सिर्फ हमारे अंदर सुनने सुनाने तक रह जाता है, फिर ज्ञान हमारे धारण हो जाए दैवी गुणों के रूप में। तो धारणा, तीसरा सब्जेक्ट धारणा है ना, वो भी इसी के आधार पे होता है। बिना योग के हमारे दैवी गुणों की धारणा हमारे अंदर हो नहीं सकती, ज्ञान की धारणा हमारे अंदर हो नहीं सकती है ना। जैसे कपड़े पे रंग चढ़ाना हो अगर आपको, तो भले आप कपड़े को रंग में डाल दो तो रंग लगेगा नहीं कपड़े के ऊपर, किंतु उसको अगर उबालेंगे तो क्या होगा? रंग में उबालेंगे तो क्या होगा? पहले रंगरेज होते थे ना, तो वो क्या करते थे, सुबह सुबह अंगीठी चढ़ाते थे ना, और उस पर फिर कपड़े को उबालते थे रंग के साथ, तो कपड़े में रंग आ जाता था। तो जो ज्ञान का रंग है, धारणाओं का रंग है, वो अंदर लग जाए, उसके लिए योग चाहिए। और सेवा के लिए क्या चाहिए? सेवा के लिए भी योग चाहिए। बिना याद के, निरंतर याद के हम सकाश दे नहीं सकते, हम विश्व का कल्याण कर नहीं सकते, विश्व को बदल नहीं सकते। योग हमारा, याद हमारा एक मुख्य सब्जेक्ट है। तो आज हम योग की गहराई में जाएंगे कि योग क्या है, याद क्या है, और कैसे हमारी याद निरंतर बन जाए, क्योंकि निरंतर याद के बगैर हमारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। आधा घंटा सुबह शाम याद करके, एक घंटा सुबह कर लिया, फिर एक घंटा मुरली सुन लिया, शाम को आधा घंटा कर लिया, शाम को सोने के पहले 5 मिनट कर लिया, इससे हमारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। अगर हमें अपने विक्रम विनाश कर लें, हमें कर्मातीत बनना है। जो आज पहले टॉपिक था ना, कर्म भोगों पर विजय पानी है, हर परिस्थिति पे कैसे विजय पाए, उस पर हम विजय पानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? योग, याद में निरंतर रहना पड़ेगा। खाली श्वासो श्वास, जैसे पहले तो बाबा कहते 8 घंटे का चार्ट रखो। जब से बाबा अवेक्त हुए 1969 की मुरली, अवेक्त मुरली में अगर आप देखेंगे तो बाबा कहते नहीं 8 घंटा नहीं, श्वासो श्वास याद में रहो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल, हर कर्म, हर संबंध संपर्क में, व्यवहार में भी आपको निरंतर याद में रहना। ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ऐसे? बाबा कहते हैं सहज योगी, शेष सहज योग में ना, सहज योगी, स्वतः योगी, स्नेह संपन्न योगी, और फिर श्रेष्ठ योगी, फिर कर्म योगी, और फिर लास्ट में है निरंतर योगी। तो जो निरंतर योगी बन जाते हैं वो निरंतर सेवादारी बन जाते हैं, उनका हर श्वास सेवा में ही बीतता है। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल कौन थे? हमारे ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने सहज योगी, स्वतः योगी, स्नेह संपन्न योगी, श्रेष्ठ योगी, कर्म योगी बन के दिखाया। हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में बाबा को कर, जब देखो, जब भी देखो बाबा को ही भी कर्म कर रहे हैं, बाबा उपले बना रहे हैं, बाबा चावल साफ करा रहे हैं, बाबा कुछ भी कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, कुछ बाबा हर काम करते थे ना। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि योग का एम्बॉडीमेंट, योग का योग क्या होती है, याद क्या होती है, कंबाइंड स्वरूप की स्थिति क्या होती है, वो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। और कर्म भोग और हर परिस्थिति पे विजय भी है ना। बाबा के सामने कर्म भोग आए नहीं आए, ब्रह्मा बाबा के सामने भी उनको क्या था, डायबिटीज थी, खांसी थी कितनी है ना, उनको भी प्रोस्टेट बढ़ गई थी, उम्र बड़ी थी, परिस्थितियां कितनी थी ब्रह्मा बाबा के सामने। 1936 से ही कितना बाबा को अपोजिशन फेस करना पड़ा, परिवार से, घर से, परिवार से भी, अपने समाज से भी है ना, गवर्नमेंट से भी, यहाँ पर आने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से, लोकल आबू के लोगों की तरफ से कितना अपोजिशन, और कितने बच्चे बाबा के छोड़ के चले गए, कैसी भी परिस्थिति आई, चाहे शरीर के कर्म भोग आए, चाहे कोई भी परिस्थिति आई, तो बाबा ने उसे फेस किया नहीं किया, कभी बाबा घबराए क्या, बाबा बच्चों के सामने एग्जाम्पल बने ना। तो आज उसी को हम गहराई समझते हैं कि हम कैसे सहज योगी, स्वतः योगी बन जाएं, स्नेह संपन्न योगी बन जाएं, श्रेष्ठ योगी बन जाएं, कर्म योगी बन जाएं, और फिर निरंतर योगी हमारा योगी जीवन बन जाए, निरंतर योगी जीवन बन जाए, हमारे जीवन में योग श्वासों श्वास समाये रहे, बाबा हमसे निरंतर कंबाइंड रहे, ऐसा हम कैसे बन जाए, बनना है ऐसा, बनना चाहते हैं ऐसे भी, सभी की इच्छा है बनने की। देखिए हमें अगर हम देखें, एक सभी को याद होगा सच्चे दिल पर सहारा जी, सुना है, सुने सुना, सच्चे दिल पर सहारा जी, साफ दिल मुराद हासिल, सुना है ना। अब दिल क्या चीज है, अगर मेरे दिल में जो मेरे दिल में होता है ना कॉन्शियस, ये तो बॉडी का दिल है, तो हार्ट है, ये तो हमारे शरीर का दिल है, आत्मा का दिल नहीं, आत्मा का भी एक दिल होता है, जो आत्मा का, जो जिसे हिंदी में चेतना कह देते हैं, अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कह देते हैं, कॉन्शियस कह देते हैं, अंतरात्मा भी कह देते हैं, तो वो जो दिल है, इस दिल में कौन है, आधा कलप से हमारे दिल में असत्य बसा हुआ था, असत्य था, सत्य के पर, योग किसे कहते हैं, योग माना, योग माना, बोले योग माना, योग माना जोड़, कनेक्शन, योग माना कनेक्शन, योग माना संबंध, योग माना जोड़, किससे, कनेक्शन विद व्हाट, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ जाना, सत्य से संबंध हो जाना, और आधा कलप से हमारा संबंध किससे था, सत्य से था, सत्य से था, सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य की परिभाषा है, सत्य पहली परिभाषा है उसकी, एक क्वालिफिकेशन भी कहते हैं, विशेषता भी कहते हैं, सत्य सदा होता है, एटर्नल होता है, जन्म मरण से परे होता है ना, सत्य का जन्म होता है ना मरण होता है, ठीक है। तो एक इंसान का सत्य क्या है, देह सत्य है, सत्य है, बोलो, देह सत्य है, सत्य है, देह का तो जन्म होता है और देह का मरण होता है ना, देहांत हो जाता है, देह छोड़ के आत्मा निकल जाती है, प्राण प्राण तो फिर उड़ जाते हैं ना, प्राण तो फिर मिट्टी रह गई, प्राण तो फिर उड़ गए ना, तो देह सत्य है क्या, सत्य है ना, देह अभिमान, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, ये सत्य है, सत्य है, बोलो, क्योंकि कोई पैदा होता है, कोई माँ पैदा होती है क्या, हमेशा कभी माँ पैदा होती है, पत्नी पैदा होती है क्या, कोई पिता पैदा होता है क्या, पति पैदा होता है क्या, कोई डॉक्टर पैदा होता है क्या, इंजीनियर वकील पैदा होता है क्या, ये तो एक रोल मिलता है ना हमको, ये अभिमान इसे कहते हैं रोल कॉन्शियसनेस, तो ना बॉडी कॉन्शियस, बॉडी सत्य है, ना देह अभिमान सत्य है, रोल कॉन्शियस सत्य है, सदा नहीं है। दूसरी विशेषता क्या है सत्य की, सत्य अपरिवर्तनशील होता है, अनचेंजेबल होता है, वो कभी परिवर्तन नहीं होता है, एक जैसा ही रहता है, तो देह तो रोज बदल रही है, जब पैदा हुए तो हमारा वजन कितना था, देह का वजन कितना था, 2.5-3 किलो था, अभी कितना हो गया है ना, 50 किलो हो गया, 60 किलो हो गया, 70 किलो हो गया, 80 किलो हो गया, 90 किलो, 100 किलो भी हो जाते किसी किसी ने, कोई 100 किलो को भी क्रॉस कर जाते हैं, ऐसा होता नहीं होता। तो ये तो बदल रहा है ना, ये तो इसका तो ये तो बदल रही है। और दूसरा रोल भी बदल रहे हैं, रोल हमेशा एक दिन में कितने रोल बदल जाते हैं। हम माता पिता के सामने बच्चे हैं, पति के सामने, पत्नी के सामने पति हैं या पत्नी हैं, बच्चों के सामने माता पिता हैं, या किसी के सामने टीचर हैं, किसी के सामने डॉक्टर हैं। तो घर में आके तो रोल बदल जाते हैं ना, घर में भी रोल, बाहर रोल अलग होता है, घर में अलग होता है, कार्य स्थान पर अलग होता है। तो रोल बदलते हैं ना, एक जैसे तो नहीं रहते। तो ये तो हम नहीं है, और आधा तरफ से हम इसी में जी रहे थे। तो देह भान, देह अभिमान और देह के संबंध संपर्क, ये सत्य है, सत्य है, बोलो सत्य है, सत्य है, असत्य है ना। संबंध संपर्क रोज बदलते हैं ना, बनते हैं बिगड़ जाते हैं, दोस्त बनते हैं दोस्त बिगड़ जाते हैं, साथी मिलते हैं साथी बिगड़ चले जाते हैं ना, माता पिता मिलते हैं एक दिन शरीर छोड़ के चले जाते हैं, भाई बहन मिलते हैं वो भी छोड़ जाते हैं। तो सब कुछ सत्य नहीं ना, सत्संबंध संपर्क सत्य। और देह के पदार्थ, प्रॉपर्टी, मकान, कार, बैंक बैलेंस, ये क्या है? सत्य है, सत्य है। और देवान के स्वभाव, देवान के पांच स्वभाव नेचर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर होता है क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता है क्या? छोटा बच्चा जब होता है उसमें होता है कि नहीं होता है, बताओ, बोलिए, होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर ये आने लगता है, नहीं? जैसे बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे लगाव झुकाव आने लगता है, प्रभाव टकराव आने लगता है, मेरा तेरा आने लगता है, क्रोध आने लगता है, लोभ चीजों का लोभ आने लगता है, मोह आने लगता है, अहंकार आने लगता है। तो देवान के स्वभाव भी क्या है? और बुढ़ापा आते आते क्या होता है, 80-90 साल का हो तो अपने आप ही खत्म हो जाते, नहीं जाते, काम विकार भी खत्म, क्रोध भी, क्रोध किस पे करे, कोई होता ही नहीं आसपास, लोभ भी किस बात का, मरने वाला है लोभ किस बात का करेगा, मोह किससे करेगा, कोई पूछता ही नहीं है, है ना, अहंकार किस बात का, शरीर में जान नहीं, चेहरा झुकिया पड़ गई, शीशा देखने को दिल नहीं करता है ना, तो अहंकार किस बात का, दांत मुंह में रहते नहीं है ना, राइट, अहंकार किस बात का रहता, तो फिर बचपन बुढ़ापे में खत्म हो जाते, नहीं हो जाते। पर आधा क्लब से 2500 साल से 63 जन्मों से हमने क्या, हमारे दिल में क्या रहा, हमारी चेतना में क्या रहा है, हमारी चेतना में यही देवान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देवान के, देह के पदार्थों का भान और देवान के स्वभाव का भान, यही हमारे आधा क्लब से रहा है। और जो दिल में होता है ना उसके हिसाब से विवेक बनता है। दिल में असत्य था, विवेक क्या हो जाता है, सत्य को पर, विवेक माना सत्य को परखने की शक्ति। तो सत्य को परखने की शक्ति क्या हो जाती है, दिल में सत्य है, हर समय सत्य, सुबह से लेकर रात तक, रात को भी, सपनों में भी सत्य, वही जीना, वही श्वासोश्वास, हर सेकंड, हर संकल्प किसके बारे चल रहा था, आधा क्लब से बताओ। ये तो देवान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का मान, देह के पदार्थों का भान, देवान के स्वभाव संस्कार का भान, देवान के संस्कार भी होते हैं, संस्कार तो मन में रहते हैं, दिल में क्या रहता है, देवान का स्वभाव रहता है। तो ये जो है देवान का स्वभाव हमारे दिल में बसा हुआ था, और उसके कारण हमारी जो विवेक था, विजडम थी, जिसे ज्ञान की तीसरी आंख भी कहते हैं, ज्ञान की तीसरी आंख बंद हो गई थी। मैं कंकास करके बता रहा था कि आपको टेंशन आ जाए कि हमारा दिल सच्चा दिल और सच्ची दिल क्या होती है, झूठी दिल क्या है, ये हमारी झूठी दिल थी, आधा कलप से हम झूठी दिल थी, उसके कारण हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो गया था, विजडम बंद हो गई थी, सत्य को प्रकटने शक्ति खत्म हो गई थी, एकदम क्या हो गया था, ज्ञान का नेत्र बंद था, विवेक विजडम थी नहीं, हम इंटेलिजेंट तो बन गए थे किंतु हमारे अंदर वाइज नहीं बने थे। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद होती है निर्णय करने की शक्ति, जो आठ शक्तियां होती है ना आत्मा की, जब दिल में असत्य है तो विवेक हमारा सो जाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है और निर्णय शक्ति हमारी क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। हम निर्णय नहीं कर पाते, यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। हम रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं और रॉन्ग को राइट को रॉन्ग समझ लेते हैं और फिर इसके आधार पर डिपेंड करता है हमारा तो दिल हमारा क्या हो गया विवेक और फिर निर्णय शक्ति हमारी होगी बुद्धि, निर्णय करने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति। अब इसके आधार पे बनता है हमारी विस्तार को सार में लाने की शक्ति। अब विस्तार को सार में लाने की शक्ति क्या हुई, जब हम निर्णय नहीं कर पा रहे तो सार विस्तार में चला जाता है, राई पहाड़ जैसी बन जाती है जो हम सब करते आए हैं। अलग से छोटी सी बात कही, छोटी सी बात थी द्रौपदी ने, छोटी सी बात कही महाभारत हो गई, एक ही छोटी सी इच्छा थी उसके पीछे रामायण हो गई। तो छोटी छोटी बातें, कोई एक विकार, मोह का विकार चाहे अहंकार का विकार, कोई भी विकार, एक छोटा सा विकार हमारे लिए महाभारत पैदा कर सकता है, रामायण पैदा कर सकता है, अभी लड़ाइयां कर सकता है। अभी देशों में जो लड़ाई होती है छोटी बात पर लड़ाई होती है, तो वो जो घरों में लड़ाइयां होती है इसी बात पर होती है, छोटी सी बात पर होती है। तो सारी जो हमारे जो सार विस्तार मतलब राय का पहाड़ बन जाता है, हमारी मन और बुद्धि देह और देह की दुनिया में फैली रहती है और छोटी सी बात होते ही वो मन बुद्धि और ज्यादा देह और देह की दुनिया में फैल जाती है। हम विस्तार को सार में ला नहीं सकते, सारा दिन मन बुद्धि भटकती रहती है, इस रात को नींद भी नहीं आती है, इसलिए ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, डायबिटीज भी होती है, हम फोकस नहीं कर पाते किसी कार्य में भी, ऐसा होता कि नहीं होता है। और समझने की शक्ति क्या होती है, समेटिंग शक्ति भी हमारे पास होती नहीं, हम समेट समेट पाते नहीं, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन नहीं सकते। जब भी कोई बात होती है तो इतना हमारी बुद्धि फैल जाती है तो सर दुनिया में बात नहीं पूछो और फिर सहन कर नहीं सकते। जब हम समेट के ऊपर हमारा परमात्मा से कनेक्शन होता नहीं, भक्ति करते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन लगता नहीं, भक्ति में तो हम भगवान की खोज है, हम परमात्मा की खोज में हमारा सारा टाइम निकल जाता है, फिर तो जो क्योंकि मन बुद्धि को समेट नहीं पाते ना, तो फिर हमारा सहन हमसे होता नहीं। थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा कर्म भोग हमारे लिए बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। एक डॉक्टर को नहीं दिखाते, 10 डॉक्टर को दिखाते हैं, उसी बीमारी की 10 बार ओपिनियन लेते हैं, विश्वास ही नहीं होता, निश्चय विश्वास नहीं होता, फिक्र ही फिक्र रहती है, मेरे ये हो गया तो, फिर ये हो गया तो, ये हो गया तो, और डॉक्टर्स भी डराते रहते हैं, नहीं होता ऐसे, समाया जाता नहीं। छोटी सी बीमारी व्याधि का रूप ले लेती है, हम उसको, हमें बीमारी हुई 10 लोगों को बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं, सारे अपने लिए भी परेशान और सारे घर को परेशान और पड़ोसियों को परेशान, दोस्तों को परेशान, को परेशान कर देते, खुद भी परेशान, दूसरों को परेशान करते, नहीं करते, सहन होता नहीं, समाया जाता नहीं, और सामना करने के लिए तो और प्रॉब्लम आ रही हो कोई और, तो फिर तो बस आय दबाव हो जाती है, नहीं होता, और सहयोग किसी का कर नहीं पाते। सहयोग चाहते सबका है पर सहयोग किसी को दिल से स्वार्थ स्पर्श करते हैं, निस्वार्थ भाव से सबसे सहयोग करते हैं, पार्टनरशिप है खत्म, राइट। तो ये दिल जो है ना, हमारा दिल चेतना जो है, तो चेतना में मेरे क्या है, अगर मेरी चेतना में सत्य नहीं है, सत्य है तो मेरा विवेक, मेरा विजडम, निर्णय शक्ति भ्रष्ट और चित्त, ये 6 शक्तियों से मिलकर बनता है चित्त। सबकॉन्शियस माइंड किससे बनता है, सबकॉन्शियस बनता है, सबकॉन्शियस माइंड चित्त जिसे कहते हैं वो बनता किस आधार पे है, 6 शक्तियों के आधार पे, विस्तार को सार बनाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, इन 6 से चित्त बनता है। जब मैं सार को विस्तार में ले जाता हूँ, समेट नहीं पाता हूँ, सहन तो होता नहीं, सामना होता समाना समाया जाता नहीं, सामना करने की शक्ति नहीं, सहयोग करने की शक्ति नहीं, तो मेरा चित्त अशांत, चंचल और बेचैन हो जाता है, अशांत, चंचल और बेचैन हो जाता है, और चित्त के आधार पे फिर चेतन मन में चिंतन चलता है। अब आपने मुरली सुन ली, मान लीजिए आपने मुरली सुनी सुबह सुबह, अब मुरली सुन के, अब मुरली याद रही आपको, मुरली का चिंतन चल रहा है सारा दिन से, आज हमने आज मुरली सुनी सुबह बाबा की, किसी का चिंतन चल रहा है, याद है मीठे बच्चे क्या कहा था बाबा ने, आज का क्वेश्चन आंसर क्या था, वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, ऑटोमेटिक चल रहा है क्या? परमात्मा परम सत्य है और उसकी मुरली वो क्या है, वो भी परम सत्य है। तो हमें स्वर्ग की बादशाही देने वाला, हमें मनुष्य से देवता बनाने वाला, वो जो कह रहा है उसकी बात याद नहीं है, दुनिया वालों की बात याद है। क्लास में भी आप बातें सुनते ना, भाषण जब हमारी क्लासेस होती है उसमें से आम बातें को करता है ना, बाबा की बातें तो वो याद नहीं देती है, जो दूसरी कोई बात एक को बता दे ना, कोई कहानी बता दे कोई भाई बहन, तो वो याद बहुत अच्छी हो जाती, दूसरे को नई बात बताए तो आपको याद हो जाती, दुनिया भी बात नहीं नहीं ऐसा होता, बताओ ऐसा होता नहीं होता? तो जो बाबा कहता है वो याद क्यों नहीं रहता है, वो क्यों नहीं चिंतन, ऑटोमेटिक प्रोसेस क्यों नहीं? सहयोगी का मतलब क्या है? जिससे हमारा प्यार होता है, जो हमारे दिल में होता है, उसकी उसको हम भूलते नहीं है, जो हमारे दिल में होता है, हमारी चेतना में होता है, जैसे हमारे लौकिक संबंधी हमारे दिल में है, मैं देह हूँ, मेरी ये देह है, मेरी माता है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरे बच्चे हैं, जो भी हमारे संबंधी है, या मेरी जिम्मेवारी है, मेरे घर में ये चीज रखी है, सेंटर में ये चीज रखी है, वो बुद्धि में भूलती है क्या? सहयोगी है कि नहीं उसके लिए मुझे बताओ, सहयोगी है कि नहीं उसके लिए? पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? अपना नाम याद करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? किसका नाम है वो? सतीश गुप्ता याद करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है क्या? मैं डॉक्टर हूँ इसके लिए याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्या? करनी पड़ती है क्या? बार बार मैं याद में याद करता हूँ मैं सतीश गुप्ता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, है ना, ऐसे बोलता हूँ क्या? तो आत्मा के लिए तो बोलना पड़ता है, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान हूँ, बार बार रिमाइंड करते हैं ना, क्यों? वो तो हमारे दिल, क्योंकि वो चीजें हमारे दिल में बस गई हैं, हमारी चेतना में आ गई हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में आ गई हैं, हमारे इसमें यहां के अंदर बस गई हैं। जो दिल में होता है इसका सच्चे दिल पर साहब राजी, दिल अगर सच्चा नहीं है, चेतन चेतन मन में क्या, मन के भी चार एस्पेक्ट होते हैं, आपको शायद नहीं पता हो, या पता बता देता हूं, चेतन मन का चार एस्पेक्ट होते हैं, मन तो सूक्ष्म है ना, तो मन के चार एस्पेक्ट कौन से हैं? उसे इंग्लिश में टीम कहते हैं, टीम थॉट्स माना संकल्प विचार, ई फॉर इमोशंस माना भावनाएं, और वृत्ति एटीट्यूड, एटीट्यूड माना वृत्ति अर्थात दृष्टिकोण नजरिया, और चौथा है मेमोरीज माना स्मृति, टीम थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड एंड मेमोरीज। क्या फर्क है? जब हम कोई विचार को गहराई से करते हैं जिनसे हमारा संबंध होता है, हमारी माँ ने कुछ कह दिया, हमारे पिताजी ने कुछ कह दिया, या हमारे बच्चे ने कुछ बोल दिया, तो हमें उसकी बात याद रहती है, उसको बार बार सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, जहां संबंध नहीं है वहां हम सोचते ही नहीं, किसी ने कुछ कह दिया हम परवाह नहीं करते, हाँ ऑफिस में किसी ने बॉस ने हमें कुछ कह दिया जो हमारा बहुत क्लोज है, जिससे दिनदार काम होता है, वो भी हमें जिसमें बार बार चिंतन चलता है, जो हमारे क्लोज होता है उसका चिंतन चलता है बार बार, और मैंने एक विचार को 10 बार किया 20 बार के गहराई से किया तो क्या बन जाता है, वो विचार भावना में परिवर्तन हो जाता है, और भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं। मान लीजिए माँ यहाँ पर है आबू में, आप यहाँ पर आए हुए, आप माँ है, और आपका बच्चा कैलिफोर्निया में है 15,000 किलोमीटर बैठा है, बीमार, आपको खबर आई कि वो बीमार हो गया, बुखार आ गया उसको, तो क्या होगा आपका, यहाँ बैठे बैठे बार बार उसका चिंतन चलेगा, वो बीमार हो गया, उसको क्या होगा, पता है कोविड तो नहीं, कोरोना तो नहीं, कोविड तो नहीं हो गया, ओमिक्रॉन तो नहीं हो गया उसको, नहीं वो इन्फेक्शन तो नहीं लग गया, पता नहीं चेक कराया नहीं कराया, पता नहीं क्या, और वो अकेला वहां पर, उसको आपकी याद आ रही है, तो आपको दिन रात वो याद कर रहे हैं, तो दोनों को वाइब्रेशन एक दूसरे को लगेंगे, पहुंचेंगे, कितने कितने किलोमीटर दूर हो गए, 15,000 किलोमीटर आपको टच होगा उसकी बात है, आपकी बात उसको टच होगी, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन, दुआएं या बद्दुआएं, ये भी कह देते हैं दुआएं या बद्दुआएं, दुआ वो पहुंचती हैं लोगों को, और फिर जब उसी भावना में रहते हैं निरंतर, तो सर्कल पूरा हो जाता है, जैसे 10 बार हमने किया तो ये भावना हो गई और इसको हम बार बार करते रहे तो सर्कल पूरा हो गया, वृत्त बन गया, सर्कल बन गया, तो वृत्ति बन गई, तो वृत्ति बन गई। अब ये वृत्ति अंदर घूमती रहती है, ये विचार मन में घूमता रहेगा, आपको नींद भी नहीं आएगी, ये नींद करते आते आते सो जाएंगे, सपने भी फिर वैसे आएंगे, नहीं होता है, फिर दृष्टि भी वैसी लगती है, दृष्टि वैसी जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि हो जाती है, दुनिया वैसी दिखाई देती है, बच्चा बीमार वहां पे है और सारे घर में दुख दुख दिखाई देगा, है ना, सब दुखी दुखी दिखाई देंगे, मैं दुखी सारी दुनिया दुखी, नहीं होता ऐसा। और फिर वही हमारे आसपास वायुमंडल बन जाता है, तो आपको कोई देख के बता रहेगा आपकी क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या, दुखी बहुत चेहरा बहुत वातावरण बहुत दुखी दुख वाला वातावरण बना हुआ है, दूसरे आदमी को भी फील होता है कि यहाँ का वायुमंडल कैसा है, ये माता जी के आसपास जरूर इसको टेंशन है, दुख में है, परेशान है, क्या बात हुई, क्या हो गया, क्या सोच रहे हो, तो कमरे में आने वाले अनजान आदमी को भी फील हो जाता है, वो ठंडक से एसी वाले कमरे में आओ तो ठंडक फील होती है, गर्मी फील होती है, बिना बताए फील होती है ना, वायुमंडल ऐसे ही हवा मंडल कह देते हैं, हवा कह देते हैं, प्रभा मंडल कह देते हैं, वायुमंडल कह देते हैं, और फिर इस वायुमंडल को जब सेंस करते हैं ना तो हमें फीलिंग आती है, हमें हमें हमारे रिकॉर्डिंग होने लगती है, हमारी हमारे जैसे कहते हैं यहाँ तो वहां तो बहुत ठंडी है, माउंट में तो बहुत ठंडी है, आबू रोड में तो बहुत ठंडी है, यहाँ के देखो तो कमरे में ठंडी लग रही है क्या आपको, डायमंड हॉल में ठंडी नहीं है, डायमंड हॉल में ठंडी है क्या, ठंडी है ही नहीं, यहाँ अब आपकी आस्था ठीक है, यहाँ तो टेम्परेचर अखबार में पड़ा -2 हो गया है, पर यहाँ -2 है क्या, तो आस्था बदल गई नहीं बदल गई, बिलिंग सिस्टम बदला ना, और फिर हमारा संस्कार इस वायुमंडल के अनुसार जो हमें फीलिंग आती है ना बार बार, उससे हमें संस्कार बदलते हैं, यहाँ के लोगों का व्यवहार, बाबा के साथ प्यार, हमें हमारी संस्कार बदल देता है, राइट, हमारी स्मृति बदल देता है, रिकॉर्डिंग बदल देता है, पुरानी रिकॉर्डिंग निकल जाती है, नहीं आ जाती है, पर ये चेतन चेतन मन में, मन के चार आस्पेक्ट टीम किसके आधार पे होता है, ये चित्त के आधार पे, चित्त के आधार पे चिंतन चलता है। अब मैं इस तरह से आप सोचता हूँ, सोचिए आप अपने आप को देखिए, अब दिल में आप सत्य को ले आइए चेतना में, तो इसको कहते हैं बुद्धि, पहली चार बातें बताई मैंने, दिल, विवेक, निर्णय शक्ति और चित्त, चित्त में 6 शक्तियां होती है, इससे बनता है, इसको कहते हैं बुद्धि, बुद्धि के 4 एस्पेक्ट है और मन के भी 4 एस्पेक्ट है, टीम, राइट, तो ये 4 एस्पेक्ट इस बुद्धि के 4 इसके, यही आत्मा के कपड़े भी है, कहते ना वो कहते बाबा धोबी है ना, बाबा क्या कहते हैं उसको, मूत पली थी कपड़ धोए, तो बाबा कौन से कपड़े धोता है, मन बुद्धि संस्कार जो कपड़े है ना बाबा इसके आत्मा के, उनको साफ करता है, ये हमारे कपड़े बहे हुए हैं, एकदम मूत पली थी हुए, विकारों से सड़ गए, बाबा इन कपड़ों को साफ करता है, तो बाबा क्या करता है, अब जो ये बाबा की मूर्ति, बाबा जो है ना, अब देखिए जो बाबा है, बाबा सत्य है और बाबा की मुरली सत्य है, ज्ञान सार रूप में क्या है, ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन होना संबंध और डिफॉल्ट ड्रामा, जब एक मंदिर होता है ना शिवलिंग का, देखा ना शिव का मंदिर, देखा आपने शिव के मंदिर में क्या होता है, अंदर सिर्फ एक शिवलिंग होता है और बाहर नंदी होता है और उसके साथ बाहर कई बार एक दो देवता खड़े रहते हैं दरवाजे के बाहर, मंदिर के दरवाजे के बाहर, और ऊपर से बहुत सारे जो ऊपर गुंबज होता है ना उस पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होती है, किंतु अगर हम बाहर के देवी देवताओं को ना देखें उसके अंदर चले जाएं तो हम शिवलिंग पे जाकर के और उसको हम दूध से धोते हैं, दूध से धोने के बाद क्या करते हैं, हम कौन से क्या चढ़ाते हैं उसके ऊपर, अपने चढ़ाते पहले चढ़ाते थे क्या, क्या चढ़ाते थे पहले उसपे बेलपत्र है ना, बेलपत्र और क्या दतूरा अख है ना, तो अगर इसी तरह से आप अपने आप को देख ले, वो तो भक्ति की बात थी कि अगर हम अपने दिल में से पहले तो इन सबको निकाल दो, देव भान को निकालो, अपने आप से बात करो, मुरली पढ़ो, एक एक लाइन को महसूस करो, 4 प्रोसेस होता है, 4 बातें मुख्य होती है, अगर हम चाहते हो आपका दिल बदल जाए, दिल में सत्य आ जाए, पहली बात है ज्ञान की गहराई, ज्ञान की गहराई में जाओ, जो बाबा की मुरली है ये मुरली में 4 बातें हैं, मुरली में ही बाबा की श्रीमत है, मुरली में शिक्षाएं हैं बाबा की, इसमें सावधानियां हैं और इसमें बाबा के फरमान है, डायरेक्शन है। श्रीमत भी है शिक्षा माना कि बाबा कहते बच्चे, श्रीमत क्या है बाबा की, अपने को आत्मा समझ के परम बाप को याद करो, निरंतर याद करो, बाबा हर मुरली में देता है, पवित्र भाव योगी भाव, ये श्रीमत है बाबा की। और शिक्षा क्या है, बच्चे अमृत वेला कभी मिस मत करो, सच्चे ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करते, कभी मुरली मिस नहीं करते, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन करते हैं, सिमरन करते हैं, मगन रहते हैं, और क्या कहते हैं, सोने के बिना पोता में मुझे दो, योग का चार्ट रखो, फिर मुरली पढ़ करके बाबा को याद करते करते सदर्शन करते करते बाबा के पास सो जाओ, बाबा की गोद में सो जाओ, ये चार बातें कहते ना, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन, सोने के पहले पोता में दो, बाबा को याद करते करते सदर्शन कराते करते बाबा की गोद में सोचो, ये चार बातें बाबा का, बाबा की शिक्षाएं हैं। और सावधानी क्या देते हैं, बच्चे अगर अमृत वेला पावरफुल करना है, मुरली पावरफुल चाहिए, मुरली अंदर रिकॉर्ड हो जाए, है ना, अटेंशन सारा दिन रहे, मनन चिंतन मंथन चलता रहे, और फिर क्या सच्चाई से पोता मेल बाबा को दे दे, और सोते सोते बाबा को याद करके, दुनिया को बातों को, दुनिया की बातों को याद करके नहीं, बाबा की बातों को याद करते करते और बाबा की गोद में सो जाए, सुदर्शन चक्र प्राप्त कराते, तो इसके लिए बच्चे पवित्र रहो। दूसरी बात बाबा बोलते शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, ये सावधानी है बाबा की। सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग करो, दो ही चीज सत्य है इस दुनिया में, दो ही चीज सत्य, क्या सत्य है, एक बाबा और एक बाबा की मुरली। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा से सुनो और फिर बाबा से सुन के धारण करके फिर दूसरे को सुनाओ। अभी छह दिन पहले की मुरली में था, तीसरे पहले की आठवीं नौवीं लाइन में था, कि ये ज्ञान कोई मनुष्य समझा नहीं सकता है, किंतु अगर ये मुरली कभी समझ में आएगी हमको, मुरली अगर बाबा से कंबाइंड होकर सुनेंगे ना तो मुरली समझ में आएगी, ये तो मुरली समझ नहीं आती, मुरली पढ़नी भी हो तो बाबा से कंबाइंड होकर सुनेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आती है, अगर ऐसे ही पढ़ेंगे सुनेंगे तो समझ नहीं आएगी। किसका प्रेम पत्र होता है ना, लव लेटर होता है ना, पहले उसका लव लेटर उसको बुद्धि में लाते हैं, पहले जिसका लव लेटर, तो उसको पढ़ते हैं तो समझ मजा आता है पढ़ने का, महसूस होता है, ऐसे ही पढ़ो तो किसी का होता में क्या फर्क पड़ता है, पता भी नहीं, फीलिंग ही नहीं होती है। तो ये मुरली भी परमात्मा का प्रेम पत्र है हमारे नाम, वो हमारा साजन है, वो हमारा माशूक है, हम उसके आशिक है, तो ये जब इसको पढ़ने का तरीका यही है, और इसको फिर इसको धारण करके किसको सुनाना है, अगर मुझे आपको मुरली सुनानी है या मुझे किसको सुनानी है, या आपको मैं क्लास कराने के लिए बैठा, या मैं क्लास करा आपसे बातचीत कर रहा हूँ, रूह ध्यान कर रहे, तो कैसे कब आपको समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं परमात्मा से कंबाइंड होकर फिर आपसे बात करूंगा तो आपको समझ में आएगी, मैं अकेला आपको अपने आप बनकर के आपको कि मैं बहुत मैं इतने साल से ज्ञान में मेरे को इतना अनुभव है इतना अनुभव है, तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, ना मुझे समझाना आएगा ना आपको समझ आएगी, राइट, समझ रहे, तो आज तो मुरली कैसे सुनोगे, इसलिए पहले योग करते हैं ना, खाली योग नहीं, आधा घंटा योग किया और उसके बाद फिर मस्ती से सुन रहे हैं शुद्ध सत्य, है ना, निरंतर बाप से कंबाइंड सूक्ष्म मदन में प्रणाम में बाबा से कंबाइंड हो फिर मुरली सुनो तो मजा है, अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, और फिर किसी से बातचीत करो तो फिर बाबा से कंबाइंड होकर मुरली के बात करो, या कोई ज्ञान के ज्ञान का पॉइंट डिस्कस करो, और एक फिर नीचे नीचे की तीसरी लाइन में चौथी लाइन में थी एक लाइन और थी, वो सुंदर बात थी, नीचे से बाबा ने कहा बच्चे तुम अभी दैवी गुण धारण करो, अगर दैवी गुण धारण नहीं करोगे तो आपका हर कर्म विक्रम होता जाएगा, हर कर्म विक्रम होता जाएगा, अभी मुरली सुन रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, सात्विक भोजन भी खा रहे हैं, फिर तो दैवी गुण धारण नहीं किया तो क्या होगा, हर कर्म विक्रम होता जाएगा, तो विक्रम विनाश कब करेंगे, तो ये जो बाबा की बातें हैं, तो दिल में अगर सत्य आ गया, माना सत्य माना, आप पहले तो इस सत्य को निकालो अपने आप से बात कर करके, मैं स्कूल दे को चलाने वाली अति सूक्ष्म चेतन जो दी, अपने आपको बार बार मैसेज दो, हमारे ब्रेन की 100 अरब कोशिकाएं हैं, उन सब में क्या रिकॉर्डिंग है, मैं सतीश गुप्ता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरे उससे संबंध है, मेरे उससे संबंध है, मेरे को ये वार्ड मिला है, मेरे को वहाँ ये है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर मेरा ऐसा है, वहाँ पर मेरा ऐसा है। आपको भी सबको अपना अपना है ना, कितना है ब्रेन की हर सेल में भरा हुआ है और बॉम्बार्डमेंट होती रहती है हाइपोथैलेमस में, बार बार वही रिकॉर्डिंग अगर चलती रहती है, कितना आप अपने आप को मैसेज देते हो नहीं मैं आत्मा हूँ, क्या होता है फिर भूल जाते हैं। कोई ऐसा जिसको ऑटोमेटिक याद रहता है मैं आत्मा हूँ, बोलो आप में से कोई ऐसा है जिसको ऑटोमेटिक याद रहता है हमेशा मैं आत्मा हूँ, है कोई ऐसा, बोलिए, कोई नहीं ना। क्योंकि ये हमको बार बार अपने आप को बार बार याद दिलाओ मैं उस परमात्मा के साथ, उससे मेरे साथ संबंध है, एक संबंध की अनुभूति उससे, उसको पहली चीजें जानो, ज्ञान को जानो बार बार, रिवाइज एंड रियलाइज, ज्ञान जो समझ है ना, जो ये बाबा क्या मुरली क्या सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, पहले उसे गहराई में चले, ज्ञान की गहराई में चले, फिर उस ज्ञान की एक लाइन को महसूस करो, रियलाइज में महसूस करो, बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभूति नहीं होती है, ये बाबा की मुरली का महावाक्य है, बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभूति एक्सपीरियंस नहीं होता है, और बिना एक्सपीरियंस के प्राप्ति नहीं होती है, बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती है, और बिना तृप्ति के परिवर्तन नहीं होता है, बिना तृप्ति के परिवर्तन। हमारा योग का लक्ष्य क्या है, अपने पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर देना, सबसे अगर हमने अपने दिल को सच्चा बना लिया, दिल को सच्चा बना दिया तो बाकी काम तो हो जाएगा, निरंतर योग अपने आप बना रहेगा, चाहे योगी भी बन जाएंगे, स्वतः योगी भी बन जाएंगे, श्रेष्ठ संपन्न योगी भी बन जाएंगे, श्रेष्ठ योगी, कर्म योगी और निरंतर योगी जीवन बन जाएंगे, विक्रम तो होंगे ही नहीं। देवी देवताओं क्या कहते हैं, उनको योगेश्वर भी कह देते हैं, योग होना निरंतर है ही, किससे योग बना, क्या कनेक्शन किससे, सत्य से, अपने सत्य से जुड़ जाना, यही तो राजयोग है, मैं आत्मा हूँ ये पहला पार्ट है, और मैं आत्मिक स्वरूप में टिके रहना हमेशा ये लास्ट अंतिम पार्ट है, शरीर बन जाना, आत्मा अलग शरीर अलग, ये लास्ट का पार्ट है ना। तो ये हमें देखना है कि हमारा पहले अपने दिल में ये पक्का करो, ये ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था, यही था ब्रह्मा बाबा को 1932 से बाबा अंतर्मुखी हो गए थे, बाबा अपने रोज रात को हट्टचारी लगाते थे, बाबा की डायरी शायद आप लोग देखी हो किसी ने, पांडव में रखी हुई है, इस चौर में रखी हुई है, तो बाबा की उसमें लिखते, बाबा लिखते थे अपने अपने को आत्मा समझ के मन बुद्धि संस्कार के दरबार लगाते थे, मन से बात करते, बुद्धि से बात करते थे, अपनी आदतों से बात करते थे, और रोज दरबार लगाते थे, अपने अपनी कर्मेंद्रियों से बात करते, आंखों से नाक कान से बात करते। तो हमें पहला, अगर हम चाहते हैं हम निरंतर योगी बन जाए तो हमें योग निरंतर रहे, हम सहज योगी बन जाए, स्वतः योगी बन जाए, हमेशा योग बना रहे, जैसे हमारा अभी आजकल लौकिक चीजों में योग लगता है, बहुत अच्छा योग लगता है, अगर हमारा निरंतर ऑटोमेटिक योग हो जाए, सहज योगी, स्वतः योगी, श्रेय संपन्न योगी बन जाए, तो पहले हमको अपने दिल में क्या करना पड़ेगा, बाबा को बिठाना होगा, शिवलिंग की स्थापना करनी होगी, शिवलिंग में ना शिव बाबा की स्थापना करनी, बाकी सबको निकालना पड़ेगा, इतने लोग बैठे आपके, आप हमारे दिल में कितने लोग बैठे बताओ, पहले तो अपनी देह बैठी है, फिर देह कौन बैठा, देह अभिमान बैठा है, फिर देह के संबंध संपर्क बैठे, कितने होंगे कम से कम 50 तो होंगे, 50 लोग छोटे से कमरे बैठे, फिर देह के पदार्थ, फिर देह के फिर देह के पदार्थ बैठे, मकान बैठा है, कार बैठी है, कितने पैसे बैंक में जमा वो बैठे, फिर देवान के स्वभाव बैठे, 5 विकार बैठे, इन सबको साफ करके तब तो बाबा आएगा, बाबा बुद्धि में कब आएगा, हमारा कमरा तो बहुत बहुत भारी ऑक्यूपाइड है, नहीं ऑक्यूपाइड है, जेल रूपी कमरा तो ऑक्यूपाइड है, तो इनको पहले ही पुरुषार्थ करो, जैसे हमने क्या किया, शिव बाबा को अंदर स्थापन करो, है ना, अंदर कहां पे, यहां पे, पर पहले साफ चाहिए, सच्चे दिल में ना, जिस दिल में एक शिव बाबा के अलावा दूसरा कोई ना हो, जिस दिन में मैं आत्मा हूँ परमात्मा के, मेरा मैं कौन मेरा कौन, और सर्व संबंध से उसको अपना लिया हूं मैंने, वो है सच्ची दिल, तो ये अपने दिल को पक्का करो, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سانسوں سانسے کو شاد کرنے کی آوشیکتا ہے. اس میں محنت ہے. اس کو بولتے دیہی مانی سے دی بابا کے ملکے کے ایک لائن کو محسوس کرتے ماں باپ کو محسوس کرتے ہوئے پڑھو. اندر ریکارڈنگ ہوتی جائے گی میں کون میرا کون ہے میرا ماتا پتا شکشک سدگرو بندھو سکھا ساجن سرجن اور بچہ نو مکھ سمجھ کی گہرائی سے اس کو محسوس کرو. پہلے میں آتما ہوں یہ محسوس کرو پرماتما کے سنتان میں محسوس کرو اور پھر باپ سے ایک سمبندھ کو گہرائی سے محسوس کرو. جہاں سمبندھ ہے نا وہاں پراپتی ہوتی ہے. جہاں سمبندھ ہے وہاں سنیہ اپنے آپ ہو جاتا ہے اور وہاں سے پراپتی بھی ہوتی ہے. تو سمبندھ کو محسوس کرے تو انوبھوتی ہوگی ریئل میں. جیسے اپنی لوکنگ ماں سے ہمیں انوبھوتی ہوتی ہے نا محسوس ہوتی ہے ماں تو انوبھوتی ہوتی ہے پراپتی ہوتی ہے ترپتی بھی ہوتی ہے اور ماں کچھ کہتے ہیں پریورتن بھی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب ماں کے روپ میں بابا کیا کرتا ہے باپ کے روپ میں کیا کرتا ہے ٹیچر کے روپ میں کیا کرتا ہے بندھو کے روپ میں کیا کرتا ہے سکھا کے روپ میں کیا کرتا ہے اسی گہرائی کو اندر سے محسوس کرو. تو جیسے اپنے دل میں یہ بات کرو بار 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 اور یہ ڈرامہ میں جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا ہوا کہ برا ہوا ہے میرے اپنے کرموں کا پھل ہے. ساکشی درشٹا استھتی کو اپناؤ. یہ میرے کو کرم ہو گیا ہارٹ کی بیماری ہو گئی ڈائبٹیز ہو گئی بلڈ پریشر ہو گئی یا کوئی بیماری ہو کورٹ میں کیس چل رہا ہے نا یا کوئی فائنینشیل پرابلم میری فیکٹری میں بزنس بیٹھ گیا ہے نا کام ہی نہیں ہو رہا گھاٹا ہی گھاٹا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے. سب سے بڑی پرستھتی کہاں سے آتی ہے سب سے بڑی پرستھتی ہماری بدھی سے آتی ہے بھٹکتی بدھی چنچل من من ہی کنٹرول میں نہیں آتا ہے بہت تیز بھاگتا ہے اور پرانے سنسکار سب سے بڑی پرستھتی یہاں سے آتی ہے. سنسکار میں ٹکر بھی کیوں ہوتی ہے ہمارے اپنے سنسکار دوسروں سے ٹکر کھاتے ہیں ہمارے دوسروں سے بنتی نہیں ہے ایرشا دویش ہوتی ہے کمپٹیشن کمپیرزن ہوتا ہے. تو وہاں سے پرکرتی سے بھی پرستھتیاں آتی ہیں. ابھی کووڈ آیا یہ بھی پرستھتی تھی. تو یہ ساری پرستھتیاں آتی ہیں اور آئیں گی اور بڑی بڑی آئیں گی. ابھی تو بہت چھوٹی چھوٹی آئے ابھی تو بہت چھوٹے ٹریلر ہیں ابھی تو بہت بڑی پرستھتی ہیں پانچوں تک اکٹھے مل کے آنے والے اس سے بھی بڑے بڑے وائرس آنے والے کورونا کے پتا جی آنے والے ابھی تو نہیں آئیں گے. میڈیکل سائنس تو بالکل فیل ہونے والی ہے نا. ایک سپریم سرجن ہی کام آئے گا. اور اس کووڈ کے مہاکال میں یہ مہاماری میں بھی کیا کام آیا ہم نے دیکھا 80 سال والے جن کو بلڈ پریشر تھا ڈائبٹیز تھی ہارٹ کی بیماری تھی وہ بھی بچ کے آ گئے اور 30 سال والے 35 سال والے وہ بھی مر گئے. ان کو کوئی نہ بلڈ پریشر تھا نہ ڈائبٹیز تھا نہ دما تھا نہ امیونٹی کی پرابلم تھی. اندر کی جو پوترتا تھی نا ڈر نہیں تھا چنتا تھی چنتا بڑھاپے میں چنتا اور ڈر نہیں تھی ان کو سب کچھ ان کے بعد اس کے بعد بھی باہر نکلا ہے. وہ چنتا تھا ڈر تھا ان کے اندر امیونٹی نہیں تھی پرتیرودھ شکتی نہیں تھی اور وہ سم کر گئے مر گئے. آپ سب نے سنا ہوگا کیا کیا ہوتا رہا پورے کے پورے پریوار ختم ہو گئے. امیونٹی پوترتا ہماری امیونٹی ہے. تو بابا کا جو پہلا ہمت کا گرم تھا انترمکھتا تھا. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں کیا ہو جائے ہم یوگ کی گہرائی میں چلے جائیں تو برہما بابا کے سمان پہلے انترمکھی بن جائیں باہ مکھتا سے اپنا دل ہٹا دیں. ٹیلی ویژن موبائل واٹس ایپ فیس بک اخبار کیا کل ہے پاسبل ہے یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں رکھ سکتے. اس ہاتھ میں بھی لڈو اس ہاتھ میں بھی لڈو ان کو نمت ماتر چلائیں ذمہ داری نبھائیں سیوا کے لیے بھلے یوز کریں کہ تو سارا ٹائم اس میں لگے رہے. اس کا فون آیا کس کو ہم شانتی کیا گڈ مارننگ کیا اس کو ہیپی برتھ ڈے کرو یہ کرو وہ کرو سب دھندے ڈفرینٹ گروپس بنا لو 15-20-25-30-40 گروپ اسی میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو دیکھتے دیکھتے. 2 گھنٹے بابا کو یاد کریں تو کیا ہوگا. تو پہلی تو انترمکھی بننا. انترمکھی مانا ایک سیکنڈ میں دیتے ڈیٹیچ اور میں اشریری آتما اشری باپ سے کمبائنڈ ہو جائے اس سے ایک سمبندھ کی انوبھوتی کرے. تو پہلے دل کو سچے دل پر صاحب راجی سب کو بھان کا دے بھان دے ویمان دے کے سمبندھ سمپرک کا بھان دے کے پدارتھوں کا بھان دے بھان کے سواؤ کو اندر سے نکال دیں لاگ دیں. ہم سب دیکھ چکے ہیں اس کو. تو ہمارا تیسری آنکھ ہماری جو تیسری آنکھ ہے نا جان کی تیسرا نیتر کھل جائے گا. सत्य को प्रज्ञ शक्ति जागृत हो जाएगी, विवेक जागृत हो जाएगा। तो ज्ञान के आधार पे जब तक इस ज्ञान को महसूस नहीं करेंगे तब तक हमें सत्य को प्राप्त, तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं, अर्थात तीसरा नेत्र की अनुभूति नहीं होगी, सत्य को प्रज्ञ शक्ति आएगी नहीं, ये अनुभूति हमारे जीवन में आएगी नहीं। तो पहले ज्ञान की एक लाइन को हाँ के महसूस करो, दिल को सच्चा और साफ बनाओ, तो फिर विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होगा तो यथार्थ निर्णय करने की शक्ति पैदा होगी, बुद्धि दिव्य बन जाएगी। जब तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा तो उससे हमारा आदि ज्योति बिंदु स्वरूप हमको याद आएगा, परम धाम वाला अपना आदि देवी देवता स्वरूप याद आएगा, राइट। तीसरी आंख खुल गई ना, तीसरी बन गई ना, तो हमें अपना ऊपर वाला स्वरूप परम धाम वाला पावन सत्व प्रधान स्वरूप बुद्धि में आ जाएगा, उसको देखेंगे हम, हमारा सत्य स्वरूप वो है, हमारा दिल सच्चा हो गया, साहब राजी हो गया, तो हमारा हमें अपना आदि ज्योति बिंदु स्वरूप दिखाई देगा, महसूस होगा, दृष्टि खुल गई ना, दिव्य दृष्टि मिल गई, तो उससे हमें अपना वो अपना आदि देवी सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप दिखाई देगा। और दूसरों को भी आदि ज्योति, हमारे घर में जो माता पिता है, भाई बहन है, सेंटर पे दूसरी बहनें हैं, हमारे जी के आंसू हैं, वो भी जैसे दिखाई देंगे, गाली देने वाला भी हमको क्या दिखाई देगा, वो भी उसका भी आदि ज्योति बिंदु से दिखाई देगा, आदि देवी देवता स्वरूप दिखाई देगा। तो ये पवित्रता जब आएगी ना तो दिव्य बुद्धि आएगी, यथार्थ निर्णय करने शक्ति पैदा हो जाएगी कि हम सही निर्णय ले लेंगे एक सेकंड में, दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट बन जाएगी, वो क्या करेंगे हमको सूक्ष्मता मिल जाएगी, एक सेकंड में सूक्ष्मता, एक सेकंड में प्राणधाम मिल जाएगी। तो विस्तार को सार में लेने की शक्ति आ जाएगी, मतलब विस्तार सार में शक्ति माना देह और देह की दुनिया की से मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के, और हमारा जो पवित्र बुद्धि पवित्र मन रूपी लाइट का सूक्ष्म शरीर, बुद्धि यहाँ है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, तो ये लाइट सूक्ष्म शरीर क्या होता है, बुद्धि उसका इंजन है और ये मन सारे शरीर में, मन जो है सारे शरीर में फैला है, जैसा शरीर की शेप है ना बिल्कुल मन की भी वही शेप है, मन ही मन को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो दिव्य बुद्धि इंजन बन गई, रॉकेट बन गया, और सूक्ष्म शरीर लाइट की छाया बन गई, और संस्कार अगर आपने अच्छे संस्कार भी पवित्र संस्कार भी बनते हैं तो आपकी चमकीली ड्रेस बन गई, तो सूक्ष्म शरीर तैयार हो गया। तो मन देह और देखी दुनिया से मन बुद्धि को समेट बिंदी आत्मा बन के, और अपनी पवित्र बुद्धि पवित्र मन पवित्र संस्कार लाइट सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म बदन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाएंगे, बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंच जाएंगे, सरल संबंधों के सार की, सरल संबंधों के महीन सार वाली याद, इसके लिए क्या चाहिए, सरल संबंधों के महीन सार वाली याद चाहिए सूक्ष्म वतन में जाने के लिए, तो सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, देह और देह की दुनिया जो मन बुद्धि फैली हुई थी, दिल में सत्य था इसलिए मन बुद्धि फैली हुई थी दुनिया में, अभी यहां से विस्तार से सार में आ गए, बाप दादा की गोद में पहुंच गए। अब क्या होगा वहां पे, हम बाबा से एक संबंध की अनुभूति करें, माँ के द्वारा दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि की गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट के रूप में मिलती है, ब्राह्मण जन्म हुआ, मां उस गिफ्ट से अपने आप को देखे, अपने आप को देखे कितनी सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आता हूँ, बाबा को देखो, शिव बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर को देखो, अपने अपने सूक्ष्म शरीर को देखो, है ना, बाप का रूप देखो, त्रिनेत्री, बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया उसको देखो, टीचर के रूप में बाबा ने इतिहास दर्शी बना दिया उसके रूप को देखो, स्वदर्शनी कर घुमाओ, बाबा की गोद में बैठ के घुमाओ, आदि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगम युग ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, अपने अंदर देखो वो सारी चीज, फिर सतगुरु के रूप में बाबा ने सरस्वती का विक्रम विनाश करा के मुक्ति, जीवन मुक्ति का महसूस करो, परम धाम को महसूस करो और जीवन मुक्ति स्वरूप को महसूस करो, तीनों लोकों में जाने का फ्री एंट्री मल्टीपल एंट्री वीजा दे दिया, कितनी बार ऊपर जाओ कितनी बार नीचे आओ, बाबा ने हमको वीजा ऐसा मल्टीपल एंट्री मतलब फ्री वीजा दे दिया, और फिर ये करने के बाद फिर क्या करो, फिर बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म जैसे जाने का अपरण धाम में जाने का, विक्रम विनाश होना, और वो फिर स्थिति को महसूस करो, फिर बंदूक के रूप में सारा बोझ बाप को दे, बड़ा भाई है ना, सारा बोझ बाप को दे दो, लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी का बोझ बाप को दे दो। सखा के रूप में अपने मन की जो भी दिल की बात है, जो भी कुछ सूक्ष्म गलतियां हो गई हो, स्थूल गलतियां हो गई हो, आपसे अनजाने को पाप हो गया, किसका दिल दुखा दिया हो, अभी नहीं बचपन में बार बार आके हमें हॉन्ट करती है वो मेमोरीज, वो व्यक्ति सामने आता है या वैसे भी याद आती रहती है, उसकी बदबुआएं हम हर्ट करती रहती है, पापा को बताओ पापा मुझसे मैंने गलती से ऐसा कर दिया, पापा झूठ बोल दिया, पापा मुझसे गलती हो गई, पापा मैंने उसको आंख दिखाई, पापा उसको मैंने क्रोध किया, पापा कुछ सही से बताओ, ईमानदारी से बताओ। फिर सखा के रूप में साजन के रूप में, साजन का क्या काम होता है, सजाना, बाबा हमको दैवी गुण सजाता है, सत्यता भिन्न भिन्न गाय का टोपी ड्रेस और गुणों के श्रृंगार, तो मस्तक में वो ड्रेस पहन लो, बाबा के सम्मान की ड्रेस पहन लो, और फिर गुणों का श्रृंगार, सत्यता पवित्रता निर्भयता सभ्यता अंतर्मुखता बेहती वैराग्य वृत्ति अनासक्त वृत्ति उपराम वृत्ति एकांतवासी, इसी गहराई में जाते जाओ, महसूस करते जाओ, तो अनुभूति होती जाएगी, तो इसको महसूस करते जाओ गहराई से। एक 36 गुण की लिस्ट बना लो, है ना, मेरे पास तो रटे हुए हैं, मेरे को तन बुद्धि में, मैं उसको चेक भी करता हूँ, तो 36 गुणों की लिस्ट बनाओ, तो उन गुणों की प्राप्ति महसूस आएगी, अनुभूति आएगी ना, राइट, तो फिर उससे आपके अंदर महसूस करो, ये इसी में इस विस्तार के साथ मनानी शक्ति सूक्ष्म में सब काम हो रहा है बाबा की गोद में। फिर क्या रह गया, साजन के पास, सर्जन, सर्जन माना, फिर जो सूक्ष्म में कहीं कहीं कुछ हो ना, आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो ना, जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं क्या करते हैं, मैं तो कभी नहीं गया, पर लोग जो जाते हैं उनको पता होगा, मैंने सुना हुआ है, वो सारा कुछ करने के बाद क्या करते हैं, फिर फाइनल टचअप करते हैं ना, बाबा भी ऐसे दिखता है, सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया, सब ठीक है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कुछ है ना, फिर टचअप करता है, फाइनल टचअप करता है ना, कुछ छोटी कमी कमजोरी निकाल देता है, उसके बाद जब सज्जन का रूप का यूज कर लेते, फिर बाबा बच्चा बन जाता है, फिर अपना तन मन धन सब कुछ उसको हवाले कर दो, बाबा ये सब तुम्हारा है, वो बच्चा बन गया, बारिश बन गया हमारा, तो ऐसे नो संबंधी गहराई से अनुभूति करो, राइट, और फिर जब ऐसा महसूस करोगे ना, अब वहां से बाबा से एक बातचीत, एक एक मुरली का एक पॉइंट बाबा से डिस्कस करो, बाबा आपने मुरली में ये बोला ना, जो अच्छी सर्विस करने वाले जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ख्याल रखते वही ब्राह्मण कुल में बड़े होते हैं, तो बाबा इस कार्य को मुझे समझाओ ना, मैं कैसे करूं, बाबा ये आपने बात बताई ना, आज प्रणाम दिया ना आपने, कैसे बाबा इसका मैं मेरे जीवन में कैसे प्रैक्टिकल आ जाए, मैं तो बहुत बार अपने आपको मास्टर शक्तिमान सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान करता हूँ, फिर गड़बड़ हो जाती है, हमेशा मेरी बुद्धि में कैसे हो जाए, तो बाबा से बातचीत करो, पवित्रता की पूछो, पवित्रता की गहराई में जाओ, शांति की गहराई में जाओ, प्रेम की गहराई, खुशी की गहराई, आनंद की गहराई में जाओ, एक शक्ति की गहराई में जाओ, जब सारा भरपूर हो जाए ना, जब पूरा हो जाए, अब वहां से अब काम पूरा हो गया, सूक्ष्म बदल गया, अब वहां से भी मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन जाओ, अश्री आत्मा बन के परंधाम कर अश्री भाव से कंबाइंड हो जाओ, करंट आने लगे, लाइट बैटरी चार्ज होने लगे, अब बैटरी चार्ज होने लगे तो क्या होगा, अब ऐसे केमिकल निकलाएंगे, एंडोर्फिन निकलाएंगे, एनकैफेलिन निकलाएंगे, सीरोटोन निकलाएगा, ऐसे हार्मोन निकलाते हैं हमारे बॉडी में, हम तो वहां पर हैं, ये तो बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो अब दर्द हो रहा था मेरी कमर, हार्ट में दर्द हो रहा था, कमर में दर्द, सिर में दर्द हो रहा था, गर्दन में दर्द हो रहा था, अब वो दर्द खत्म हो गया, सहन करने की शक्ति आ गई, अब फील ही नहीं हो रहा है, मुझे रोज कोई गाली देते थे, गालियां बार बार याद आती थी, इंसल्ट करता था मेरी कोई बार बार, मुझे वो याद आती थी, योग में भी याद आती थी, अभी तक अभी कोई याद ही नहीं आ रही, सब हल्का हो गया एकदम, सब भूल गए, सहन हो गए, समा भी लिया, अब किसको कहने की बात ही नहीं है, मैं फ्री हो गया, दर्द है ही नहीं, घुटने का दर्द भी गायब हो गया, कमर का दर्द भी गायब हो गया, सिर का दर्द, गर्दन का दर्द, पेट में गैस बन रही थी वो भी खत्म हो गई, एसिडिटी भी खत्म हो गई, सांस भी आना शुरू हो गया, ये प्रैक्टिकल चेंज होता है, हमने हजारों पेशेंट्स में जो हार्ट का प्रोग्राम होता है ना, उसमें हजारों पेशेंट में परिवर्तन, एक हफ्ते के अंदर लोग ठीक हो जाते हैं, जो 50 कदम चल नहीं पाते कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल होता है ना, ये योग की गहराई, दिल को सच्चा और साफ बनाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तो जब हम ऐसा कर लेते हैं तो क्या होता है, सहन हो गया, समा लिया, अब हम फ्री हो गए। सामना और भी प्रॉब्लम तो बहुत सारी आने वाली, रोज रोज नई नई प्रॉब्लम आने वाली, एक दिन में 50 प्रॉब्लम कम से कम आती है हर इंसान को। कभी अपने अंदर से कर्म भोग की आती है, कभी बाहर से आती है, कभी अपनी अपनी बुद्धि से आ जाती है, कभी मन से आ जाती है, कभी संस्कार से आ जाती है, कभी पड़ोस से आ जाती है, कभी घर से, कभी साथी से आ जाता है, कभी बाराती से आ जाती है, आती रहती है। कभी ठंडी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी कुछ लगा ही रहता है, नहीं लगा रहता। घर में आओ, घर में अलग प्रॉब्लम, ऑफिस में जाओ, ऑफिस में अलग प्रॉब्लम, किसी से फोन पे बात करो तो उससे अलग प्रॉब्लम, सब जगह समस्याएं ही समस्याएं होती है। इसलिए कहते हैं नरक क्या है, विशेष सागर है ना ये, तो प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम होती है, तो सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, घबराते नहीं अभी हम। और कोई हमसे इतना भी इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला भी हमको क्या करे, तो हम उसको सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये हो गया हमारा, अब चित्त कैसा हो गया, दिल में सत्य विवेक जागृत, निर्णय शक्ति दिव्य, और चित्र हमारा कैसा हो गया, विस्तार को सार में लाने शक्ति, विस्तार को सार में ले गए, सूक्ष्म में सार में चले गए, वहां से बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो गए, करंट आनी शुरू हो गई, हार्मोन्स परिवर्तन हो गए, सहन करने शक्ति आ गई, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति आ गई, सहयोग करने की शक्ति आ गई। अब जो दिल में है वो चित्त में हो गया, और दिल चित्त हमारा शांत एकाग्र आनंदमय हो गया, इसको बोलते सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि, सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि। तो अगर हमें निरंतर सहजयोगी बनना है, निरंतर योगी बनना है, सहजयोगी स्वतः योगी श्रेष्ठ योगी संपन्न योगी बनना है, और निरंतर योगी जीवन बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो अपनी बुद्धि को सच्चित आनंद स्वरूप बनाना पड़ेगा। शिव बाबा की बुद्धि कैसी है, देवताओं की बुद्धि कैसी होती है, परिष्टों की बुद्धि कैसी होती है, सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि होती है ना। अब जैसा चित्त वैसा चिंतन, तो चेतन 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 मन में कौन सा चिंतन चलेगा, अब चेतन मन में कौन सी मेमोरी मर्ज हो गई, अब चेतन मन में संपूर्ण पिछले कलप वाली सूक्ष्म वतन में मेरी संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की मेरी मेमोरी है, मेरी वहां पे चित्र है, मतलब मेरा सूक्ष्म वतन में बाबा के दिल में संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप का दिल है, एक तो प्राश्पुरुषादि स्वरूप का चित्र है बाबा के पास सूक्ष्म वतन में, वो भी है, और फिर फरिश्ता स्वरूप भी है, और फिर देवता स्वरूप भी। अब मेरी स्मृति में वही मर्ज हो गई, कौन कौन सी, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप, और बीज स्वरूप, बीज रूप, अब वो मेरी मेमोरी इमर्ज हो गई, अब वो फाइनल इमर्ज खुल गई। तो मेरी स्मृति इमर्ज हो गई ना, तो स्मृति इमर्ज होगी क्या हुआ, अब चिंतन मेरा मुरली का चलेगा, अब मुरली का चिंतन चलेगा, ठीक है ना, नहीं तो मुरली का चिंतन नहीं चलता है, बाबा ने जो कहा वो चिंतन नहीं चलता है, वरदान का चिंतन नहीं चलता है। अब उस वरदान को बहुत प्यार से याद करूंगा, बार बार बाबा को बहुत प्यार से, वो बाबा की मुरली का एक लाइन याद आएगी, बार बार याद आएगी, बाबा मेरा कौन कौन सा है, माता पिता शिक्षक संबंध संबंधी के रूप में उसको याद करेंगे, तो क्या होगा, भावना मैं बाबा को याद, मेरी भावना बाबा तक पहुंचेगी, बाबा की भावना मेरे तक पहुंचेगी। मुरली में बाबा ने कहा तुम मुझे एक बार याद करते हो ना, मैं तुमको कदम गुणा याद करता हूँ, याद से याद पहुंचती है, तो बाबा की याद मेरे को आएगी, बाबा मुझे कदम गुणा याद, बाबा छत्र छाया बन जाएगा, तो बाबा के वाइब्रेशन मेरे को आएंगे, मेरे वाइब्रेशन बाबा को जाएंगे, तो क्या हो गया, कैचिंग पावर टचिंग पावर, अब मैं उसी भावना में सारा दिन रहूंगा, बाबा मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, एक संबंधी अनुभूति होती रहेगी, हर समय हर जगह हर कार्य में हर संबंध से बाबा मेरे साथ, प्रैक्टिकल फीलिंग होगी, भगवान हमारे साथ ही खाली गीत नहीं गाएंगे, ईश्वर मेरे साथ है डरने की क्या बात है, गीत नहीं गाएंगे, रियल में फील होगा, हमारी रूहानी वृत्ति हो जाएगी, रूहानियत आ जाएगी, रूहानी दृष्टि हो जाएगी, सब आपको सब बाबा के बच्चे दिखाई देंगे, सब आत्माएं दिखाई देंगी, सब फरिश्ते दिखाई देंगे, सब देवता दिखाई देंगे, कोई कैसा भी हो, गाली देगा ना क्या करेगा, गाली सुना समय सुनाई देगी, हमारा हवा मंडल इतना बड़ा हो जाएगा, बाहर से गाली देता हुआ आएगा, हमें मारने के लिए भी आएगा, अंदर आके हवा मंडल में आके बदल जाएगा, बाहर से गर्मी में आ रहा था, अंदर आया ठंडक थी, ठंडक में वो भी ठंडा हो गया, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने होता था ना ब्रह्मा बाबा के सामने, मारने के ख्याल से भी आया, बाबा के पास आया, बाबा को देखा, ये तो कहते हैं तो गुरु नानक खड़े हैं, ये तो लाइट लाइट है ना। बाबा उपने बना रहे, उसको अपने 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 इष्ट का साक्षात्कार हो गया। तो ऐसा हमारे साथ होगा, प्रैक्टिकल में होगा, रूहानी दृष्टि मन वायुमंडल बन जाएगा। और फिर उसमें क्या होगा, मेरे मेरी जो परसेप्शन है, फीलिंग्स है, मेरी आस्थाएं थी पहले, मेरे लिए मंगलवार खराब है, मेरे लिए शुक्रवार खराब है, मेरे लिए शनिचंद की दशा है, मेरे ऊपर राहु की दशा है, सारी दशाएं भाग जाएंगी, आस्थाएं सब भाग जाएंगी, सब पुरानी आस्थाएं बदल जाएंगी, बिलीफ सिस्टम नहीं, बाबा हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, और नए संस्कार। जब मेरे जब निरंतर ऐसी स्थिति रहेगी ना, तो निरंतर योगी बन जाएंगे, सहज योगी, स्वतः योगी, नए संपन्न योगी, क्योंकि हर संबंध हमारा बाबा के साथ है, और श्रेष्ठ योगी और कर्म योगी, हर कर्म में योग लगा रहेगा, और निरंतर योगी जीवन बन जाएगी हमारे, नहीं बनेगी, और नए संस्कार पवित्रता आ जाएगी हमारे अंदर, प्रैक्टिकल सारे विकल विनाश होते जाएंगे, पवित्रता आती जाएगी, और शांति वर्तमान में जीने लगेंगे, पास के सब विचार खत्म हो जाएंगे, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी, 90% विचार कट जाएंगे, 10% विचार रह जाएंगे, शांति माना वर्तमान में रहना, और पवित्रता माना अपने जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो, दूसरे के सत्य स्वरूप को देखना, लगाव झुकाव प्रवाह टकराव से मुक्त, क्या क्यों कैसे से मुक्त, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, शिव बाबा को यहां संभालेंगे और आंखों में ब्रह्म बाबा समा जाएगा, हर चीज ब्रह्म बाबा को फॉलो करेंगे, और फिर हमारी पवित्रता, शांति, प्रेम, सच्चा प्रेम माना जो जैसा भी उसको वैसा स्वीकार कर लो, जैसे ब्रह्मा बाबा सबको स्वीकार, शिव बाबा सबको स्वीकार करते हैं बिना किसी शर्त के, दिल से सम्मान से स्वीकार करते, पालना देते हैं, आतंकवादी को पूरी पालना मिलती है, सब कुछ मिलता है उसको, हवा पानी सब कुछ मिलता है। एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है ना, वो विलन को भी पूरा सब कुछ खाना पीना, उसको भी फीस देता है, नहीं देता है, खाली हीरो को फीस देता है, आतंकवादी जरूरी नहीं है भारत देश के लिए, विश्व के लिए, महाभारत के लिए बहुत जरूरी है ना। तो बाबा है सबको ऐसे हमारा प्यार, फिर अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति, तो ये जब हमारे अंदर परिवर्तन होगा, तो महसूसता से इस मुरली के महावाक्य की महसूसता से हमारे अंदर शक्तियों की अनुभूति होगी, शक्तियों के अनुभव की अथॉरिटी बनेगी, उससे फिर हमारे अंदर गुणों की क्या होगी, प्राप्ति होगी, और फिर क्या होगी, गुणों की प्राप्ति के बाद फिर हमारे अंदर तृप्ति होगी, तृप्ति माना हर गुण 100% बन जाएगा, सर्वगुण संपन्न, 16 का संपूर्ण 100% बन जाएंगे, तो संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, मनुष्य से फरिश्ता से देवता बनते जाएंगे। तो ये सहज विधि है, सहज योगी, स्वतः योगी, सने संपन्न योगी, श्रेष्ठ योगी, निरंतर योगी जीवन, कर्म योगी, निरंतर योगी जीवन बन जाएंगे। तो पर करना क्या है, सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका है दिल में क्या बिठा दो, सच्चे दिल पर साहब राजी, साफ दिल मुराद हासिल, दिल में सिर्फ बाबा को बिठा दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओम।